हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद सीनियर सहाफ़ी शाहिद मतीला मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल एहसान उलग आजकल मौजूद हैं, तो उनसे हमारी मुख्तसरन बात हुई इस सिलसिले में, तो हम वो भी सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे साथ फ़ोन पे मौजूद हैं सहाफ़ी शाहिद मतीला, तो उनसे बात करते हैं। शाहिद, आप मुझे सुन सकते हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ जी।
शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। तो आपसे पिछले हफ्ते भी बात हुई थी, ये तो बहरहाल ये इस्लामाबाद में के हुए एक और धरने का इख्तिताम हुआ। इस्लामाबाद तो लगता है कि अब धरनों की सरजमीन हो गया है, तो वैसे इस बारे में बताइएगा कि ये उन तमाम सामीन के लिए जो शायद जानना चाह रहे हों कि आखिर ये मामला कब और क्यों शुरू हुआ और इस कदर मामला फैलते फैलते इतना बड़ा हो गया, तो ये कहाँ से धरना शुरू हो गया, क्या वजूहात हुई?
देखिए, इलेक्शन एक्ट रिसेंटली हुकूमत की जानिब से पास किया गया, जिसको इलेक्शन एक्ट 2017 भी कहा जाता है। उसके कुछ सेक्शंस में तब्दीली की गई है, जिसमें 7C और 7B शामिल है, प्लस जो हाउस नामा था जो कि इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाता था, उसमें भी तब्दीली की गई। जैसा कि उसमें ये इकरारनामा किया जाता था कि आई सोलमली अफर्म कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ, उनके आखिरी नबी होने पर मुकम्मल यकीन करता हूँ, उसको चेंज कर दिया गया था। उसको सिंपल ये कह दिया गया था कि मैं उनको आई डिक्लेयर, मैं उनको मानता हूँ कि वो आखिरी नबी है, जबकि उसमें कसम हल्फिया बयान वाला एक जो लफ्ज था उसको तब्दील कर दिया गया था, जिस पर JUIF के जो सेनेटर हैं हाफिज हमदुल्ला, उनकी जानिब से सेनेट ने कहा गया आगे हुकूमत की जानिब से ये तब्दीली की गई है, जिस पर काफी शोरोगुल हुआ। और उसके बाद हाफिज हमदुल्ला की जानिब से एक तहरीक भी पेश की गई, एक बिल भी पेश किया गया, जिसको जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो सका सेनेट में, जिसको 13 वोट मिले और जिसकी मुखालफत में कोई 34 वोट मिले। और मैं आपको बताता चलूं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जाहिद हामिद ने भी उसकी बिल की उस बिल की हमायत की थी, हाफिज हमदुल्ला के बिल की हमायत की थी, लेकिन चूंकि वो अददी अक्सरियत से नाकाम हो गया, अददी अक्सरियत पूरी नहीं थी, तो इसलिए वो बिल पास नहीं हो सका। इसके अलावा बुनियादी तौर पर तो बात यहीं से शुरू हुई, लेकिन 7C और 7B जिनको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया था, जिसमें ये शिक थी कि जो कादियानी हैं, जो अहमदी हैं, वो मुसलमानों की लिस्ट में ही वोट शामिल कर सकेंगे। इससे पहले ये था कि उनकी वोटर लिस्ट जो थी वो अलहदा से बनाई जाती थी, और अगर ये पता चलता कि किसी कादियानी का वोट मुसलमानों की वोटर लिस्ट में है तो 10 दिन के अंदर उसको उसके बारे में इलेक्शन कमीशन या जो मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर वगैरह हैं उनको मुत्तला किया जा सकता था। लेकिन 7B और 7C को रिमूव करने के बाद ये हुआ कि उनकी उनके नाम भी मुसलमानों की वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए गए, वो भी बतौर मुसलमान ही वोट कर सकेंगे। ये सारी चीजें थी जिसकी बुनियाद पे धरना हुआ। कुछ अर्सा पहले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कुछ और जो
अच्छा शायद ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह खासी नई तंजीम, नया ग्रुप है, तो ये कब इसका क़याम हुआ और किस तरह से ये मतलब इस कदर ताकतवर हुआ कि पूरे दारुल हुकूमत को घेर के बैठ जाए, तो इसके बारे में जरा बताइएगा, ये किसका क्या पस मंजर है?
अधिकारी साहब मुमताज कादरी, जो कि साबिक गवर्नर सलमान तासीर को जिन्होंने कत्ल कर दिया था, ये उसके नाम पर बनाई गई और उसी के नाम से मंसूब करते हुए इसको तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का नाम दिया गया। ये अभी इसी साल बनाई गई है और इंटरेस्टिंगली इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसको बतौर सियासी जमात कबूल भी कर लिया गया है और NORC भी जारी कर दिया गया, चूंकि NOC जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये अभी इसी NA-120 के इलेक्शन से पहले ही ये इमर्ज हुई एज पार्टी के तौर पर, और इन्होंने कुछ 7,900 के करीब वोट्स NA-120 में। और इसी तरह से जब NA-4 पेशावर का इलेक्शन हुआ जिसमें पीटीआई के एक जो मुनहरिफ रुकन थे गुलजार खान, उन्होंने जब उनकी हलाकत हुई, जब उनकी वफात हुई, तो उसके बाद वहां पे इलेक्शन हुए कंडक्ट, तो उस इलेक्शन में भी ये तीसरी बड़ी पार्टी इमर्ज हुई, और NA-120 लाहौर में भी ये तीसरी बड़ी पार्टी इमर्ज हुई। तो उन्होंने 6 नवंबर को अपना धरना लाहौर से शुरू हुआ, लाहौर से धरना शुरू करने से पहले इन्होंने पंजाब में भी कुछ अर्सा बैठे रहे, और इन्होंने निगोशिएट किया राणा सनाउल्ला और दिगर अराकीन से, और दिगर जो हुकूमती पंजाब के जो हुकूमती ओहदेदारान से उनसे निगोशिएट किया। तो उनसे ये डील की कि हम सिर्फ धरना नहीं देंगे बल्कि वहां पे सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और वापस आ जाएंगे, और पार्लियामेंट के सामने हम जाके बैठ जाएंगे, पार्लियामेंट के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और वापस आ जाएंगे। ये कमिटमेंट तहरीके लबैक या रसूलुल्लाह की जानिब से दी गई थी।
ये क्या
जहां तक
तहरीरी
आपके सवाल का
कमिटमेंट थी
ताल्लुक,
या सिर्फ जबानी बातचीत हुई?
नहीं सलीम साहब, ये सिर्फ जबानी बातचीत थी और इसमें कोई तहरीरी मुआहदा जो है वो नहीं किया गया था। लेकिन ऐसी इत्तलात भी आती रही कि राणा सनाउल्लाह की जानिब से इनको कहा गया था कि आप जाके वहां बैठ जाएं और ये मुतालबा करेंगे, जाहिद हारिस के इस्तीफे का मुतालबा करेंगे तो वो रिजाइन कर देगा। मैं जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये बताना चाहता था कि तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह एज सच इतनी पावरफुल जमात नहीं है कि वो एज थर्ड थर्ड पॉलिटिकल पार्टी, थर्ड पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान की बनकर उभर है। लेकिन चूंकि नाम कुछ ऐसा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये पार्टी बनाई गई है और उन्हीं की निस्बत से जो है वो तहरीक भी चलाई जा रही है, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के खत में नबूवत, तो ये मामला बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक और बहुत संजीदा और पेचीदा है, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को ये एज मिला कि वो पेनीट्रेट भी कर जाए और उसका जो एजेंडा है, उसका जो मुतालबा है, वो जबाने जदे आम भी हो जाए। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने बहुत सेंसिटिव जो एक इशू था जो मुसलमानों के फेथ से मुतालिक था, उनके मजहब से मुतालिक था, उसको एक्सप्लॉयट करते हुए उन्होंने जो है तहरीक को चलाया, और अब वो इस तहरीक को चलाने में कामयाब हो गए।
अच्छा, ये अब
और
धरने का जो
उनका
अख्तिताम हुआ, ये खास तौर पे जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं मौजूदा, उनके तो एहसन इकबाल साहब, उनकी तरफ से मुसलसल कहा गया है कि नहीं, हम बातचीत से मामला हल करेंगे, फिर ये बातचीत से जो कोर्ट के दबाव की वजह से शायद ये ऐसा हुआ कि उन्होंने एक्शन लेने की बात की, जिसमें अब ये भी कहा गया है कि उनके जानी से पुलिस को भी उन्होंने कहा कि ये किस तरह से चीज़ें हो गई, और ये आपस में बड़े अफरा तफरी की सूरत नज़र आती है खुद हुकूमत के हलकों में से हवाले से। ये सब क्या इस्लामाबाद में बैठे आप सुन रहे हैं कि क्या किस तरह से चीज़ें ये हुई और किस तरह से डेवलप हो रही हैं?
असलीम साहब देखिए, इस्लामाबाद में बैठ के सुनने वाली बात जो है वो दरकदार कीजिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं मुसलसल धरना कवर करता रहा हूँ। जो ऑपरेशन किया गया उसकी नाकामी की बहुत सारी वजूहत थी। बुनियादी तौर पर जो ऑपरेशन था वो कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन नहीं था, वो कोई कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन नहीं था, उसमें लैक ऑफ स्पिरिट था, लैक ऑफ लीडरशिप थी, कोहिनियन बिटवीन फोर्सेस नहीं था, और इस तरह के और बहुत सारे मसाइल थे। फिर अब आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा कि वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि ये मेरी मर्जी से ऑपरेशन नहीं किया गया, बल्कि इंतजामिया ने खुद ऑपरेशन किया। गलत बात कह रहे हैं, इंतजामिया से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वजीर दाखिला की जो हदायत है उसके बगैर ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया जाए। आपको बताऊं कि ये 22 रोज तक ये धरना चला है, मुख्तलिफ मुजाकराती दौर हुए हैं, मुजाकराती अहद में मुख्तलिफ शिकों पर गौर किया जाता है, लेकिन पहले दिन से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का ये मुतालबा था कि ہر صورت جو ہے وہ ریزائن کروایا جائے، زاہد حامد کا اس کو مستعفی ہونا چاہیے، اس مطالبے کے ساتھ وہ یہاں پر آ کے بیٹھے تھے. اور جتنے مذاکراتی ادوار ہوئے ان سب میں یہی کہا گیا تھا کہ اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو ہم ان کے گھر کو چلے جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ یہ بہت پورلی امپلیمنٹڈ ہوا، بیڈلی پلانڈ آپریشن تھا، ہوا یہ کہ جب آپریشن کیا گیا تو پورے ملک میں جو ہے ایک طرح سے آگ لگ گئی. ہر ایک نے سمجھا کہ شاید یہ حکومت نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اور آپریشن اور ان پہ بہت ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. تو تمام جو مسلمان تھے، خاص طور پر مذہبی جماعتوں سے جن کا تعلق تھا، اور ادروائز پڑھے لکھے لوگ بھی، یونیورسٹیز کے لوگ اور ادروائز بھی، وہ سارے لوگ بھی گھروں سے باہر نکل آئے. مساجد میں مثال کے طور پر راولپنڈی میں اعلانات ہوتے رہے اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھی اعلانات ہوتے رہے کہ اسلام آباد پہنچا جائے. تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپریشن 90% کمپلیٹ ہو گیا تھا، کامیاب ہو گیا تھا، لیکن کوئی 400-500 جو مدرسے کے طلباء تھے ان کی جانب سے بڑی روڈ سے ایک جو دھیلا آیا اور ایک ریلی آئی، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس وہ بھی آنسو گیس تھے، جدید قسم کے آنسو گیس کے شیل تھے اور آنسو گیس فائر کرنے والی گنز بھی تھی اور ڈنڈے بھی تھے. تو اس وجہ سے پانسہ کافی پلٹا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل قریب پہنچ گئے تھے اس کنٹینر کے، اور اگلے 10 سے 15 منٹ میں بالکل ایکسپریس وے کو خالی کروا لیا جاتا. لیکن یہ کہیں نہ کہیں اور 100% نہ صحیح تو 99% یہ جو ہے آپریشن کی ناکامی کا ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے، انتظامیہ پہ عائد ہوتی ہے. ان کی فورسز میں کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا لڑنے کا.
اچھا، اس کے بعد یہ فوج کے اوپر بات ہوتی رہی ہے، جو فوج کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے مداخلت کی بات ہوئی. ابھی اس سے پہلے بھی خبر تھی جس میں خود ان کے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو سربراہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اصل میں یہ آرمی تھی جس نے اس بات کو یقین بنایا کہ حکومت ہمارے مطالبات تسلیم کرے. تو اس کے حوالے سے بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں آرمی کے کردار کی، کہ آرمی نے شاید اس میں کوئی کردار، اور یہ الزام بھی لگایا جاتا تھا کہ آرمی کی طرف سے کوئی اس میں کردار ادا ہوا. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ کیا آپ کی مشاہدہ رہا ہے؟
جی دیکھیے، اتوار کے روز جو وزیراعظم شاہد خاقان عباسی ہیں اور آرمی چیف ہیں، ان کے درمیان ملاقات ہوئی، جو ڈی ایم ہاؤس میں ہوئی. اسی ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹی وی چینلز کو کھولا جائے، چونکہ ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا تھا، جبکہ ان کو پہلے سے بند کیا جانا چاہیے تھا آپریشن کے بعد. لیکن ٹی وی چینلز اور میڈیا کا بڑا رول رہا ہے، لوگ جو باہر نکلے گھروں سے. تو میں دوسری طرف جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ بالکل آرمی کی جانب سے ایک بھرپور کردار ادا کیا گیا ہے، بلکہ آرمی ہی نے یہ دھرنا ختم کروایا، چونکہ حکومت بے بس ہو چکی تھی. حکومت نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ایک طرح سے چھاڑ لیے تھے، اور متعدد ٹویٹس بھی اس حوالے سے وزیر داخلہ کے آ چکے ہیں، ہماری بات بھی ہوئی. تو ان سارے سلسلے میں وزیر داخلہ اور حکومت مکمل طور پر بے بس نظر آئی، چونکہ ان کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں تھا. پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، پورے ملک میں ایک بدامنی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. تو آرمی چیف کو ریکویسٹ کی گئی تھی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے کہ آپ اس میں کوئی رول پلے کریں. اس کے بعد آرمی چیف نے جو ہیں وہ میجر جنرل فیض حمید ہیں، ان کو ان کے ذمے یا ڈی جی آئی ایس آئی کے ذمے یہ کام لگایا، اور پھر وہ چونکہ میجر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں میجر جنرل فیض، تو ان کی جانب سے جو ہے وہ دھرنے کے قائدین سے رابطہ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کے جو بھی مذاکرات ہیں ان کو حل کروانے کی کوشش کریں گے، ان کو بنوانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو دھرنا ختم کرنا ہوگا. جس پر ان کی جانب سے بھی آمادگی ظاہر کی گئی، چونکہ دونوں فریقین کے درمیان اعتماد کی کمی نظر آتی تھی. شاید استعفیٰ جو ہے زاہد حامد کا وہ پہلے بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن حکومت کو یہ ڈر تھا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین اور کارکنان مزید مطالبات بھی لے کر آئیں گے اگر استعفیٰ دے دیا جاتا ہے. इस्तीफा देने पर न सिर्फ जाहिद हामिद बल्कि हुकूमत भी किसी हद तक राजी थी पहले से, लेकिन हुकूमत को ये खदशा था कि अगर आज इस्तीफा ये दे देते हैं तो इस्तीफा देने के फौरी बाद ये कोई और नया मुतालबा भी कर सकते हैं, बल्कि कई मुतालबात भी किए जा सकते हैं। तो फौज की जानिब से एक भरपूर किरदार अदा किया गया है, लेकिन वो वजीर आजम पाकिस्तान की मर्जी से और उनकी दरख्वास्त पर किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि अगर हुकूमत इस मसले को हल करना चाहती तो हुकूमत के हाथों से ये मसला पहले ही निकल चुका था, हुकूमत कभी भी ये मसला हल ना कर पाती। ये आर्मी चीफ की जानिब से उनको पैगाम भेजा गया धरने वालों को कि आप धरना हर सूरत खत्म करें, मुल्क के हालात इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि इस धरने को मजीद तवील किया जाए और इस तरह के धरने वगैरह किए जाए। तो फिर एक 6 निकाती जो है मुआहदा है वो साइन किया गया, जिसमें एक सबसे पहला मुतालबा और जो शिक थी वो ये थी कि जाहिद हामिद इस्तीफा देंगे, दूसरी शिक ये थी कि जब राजा जफरुल हक की जो रिपोर्ट है जो 3 रुकनी अराकीन ने बनाई है कि कौन इस तब्दीली का जिम्मेदार है हल्फ में, और जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी 7B और 7C सेक्शंस में, तो फिर उनकी जानिब से ये भी मुतालबा एक दूसरा आया कि 30 दिन को उस 30 दिन में उसको मंजरे आम पर लाया जाएगा और जो जिम्मेदारान है उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। तीसरा मुतालबा ये था कि जितने कारकुनान जेलों में हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के, उन सबको रिहा कर किया जाएगा और उनको 3 दिन में रिहा किया जाएगा, जो कि हमने देखा उनको रिहा भी कर दिया गया। एक चौथी चीज ये थी कि जो पंजाब के साथ वादा हुआ है उसको मिनोअन तस्लीम किया जाएगा। अब वो बड़ा गंभीर और बड़ा पेचीदा है जिसकी वजह से हुकूमत को एक नई सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, और ये जो सुबकी उनको फौज के जरिए मसला हल करवाने में हुई है उससे भी बड़ी सुबकी ये है कि जो बड़ा जो एक गैर एलानिया या एक खुफिया माहिदा पंजाब हुकूमत के साथ किया गया था, उन पंजाब के साथ किए जाने वाले मुतालबे में माहिदे में ये चीजें हैं कि जो निसाब है तालीमी इदारों का और जो निसाब है मुख्तलिफ जमातों का। जी सलीम साहब
जी ने आप जारी रखें।
अच्छा, तो उसमें काफी सारी चीजें हैं कि उस बोर्ड में बैठा जाएगा जो बोर्ड 10वीं तक या 12वीं तक का निसाब मुतय्यन करता है, उसमें तहरीक लद्दाख या रसूलुल्लाह के लोग होंगे, फिर मस्जिद में जो स्पीकर का आजादाना इस्तेमाल होगा, और इसी तरह की दूसरी शरायत है जिसकी वजह से काफी ज्यादा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, पांचवा जो मुतालबा है वो ये है कि जो जितनी अमलाक का नुकसान हुआ है 6 नवंबर से 27 नवंबर तक, चूंकि ये 27 नवंबर की अलल सुबह और सारी रात मुज़ाकरात होते रहे और अलल सुबह एक 1 पेज डॉक्यूमेंट नजर आया, तो पांचवा मुतालबा सलीम साहब ये था कि जितनी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा है उसका इजाला जो है अब वो सूबाई और वफाकी हुकूमत करेगी। और छठा मुतालबा मैं आपको बताऊं वो ये है कि एक बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, एक इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो इस बात का तयन करेगा कि जो 25 नवंबर को जो ऑपरेशन किया गया था जिसमें 6 के करीब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान की हलाकत हुई थी और कुछ 2 पुलिस ऑफिसर्स का इंतकाल भी हुआ था, वो इंक्वायरी बोर्ड इस बात का तयन करेगा कि उसमें किसकी गफलत थी, किसकी गलती थी, और उसमें भी हुकूमत और इंतजामिया अगर कसूरवार है, हुकूमत और इंतजामिया अगर कसूरवार है तो उनको जो है वो करार वाके सजा दी जाएगी और मुल्क की कानून के मुताबिक उनके साथ निपटा जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुर्खी है कि हुकूमत के ऊपर एक तरह से बोर्ड बनेगा, दो हुकूमत के लोग उसमें शामिल होंगे, लेकिन वो हुकूमत और इंतजामिया की गफलत को भी जांचेगा वो बोर्ड, और जिसमें तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की मुशावरत शामिल होगी, मुमकिना तौर पर उनके लोग भी शामिल होंगे। तो इस तरह की मल्टीपल मल्टीपल शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये कहा जा
बहुत
सकता है
बहुत शुक्रिया
हुकूमत को।
शाहिद, ये आपने बहुत ही कम्प्रेहेंसिव, बहुत ही जामे सूरत हाल बताई हमारे सामिन को कि इस धरने की किस कदर दूरस असरात मुस्तकबिल में हो सकते हैं पाकिस्तान पे, जिसमें पाकिस्तान का निसाब भी शामिल है, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पे पड़ने वाली जो सुबकी है और उसके मुस्तकबिल का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद ये सारी मालूमात देने का। सामिन, इसी हवाले से जैसे बात हुई कि इस धरने को ख़त्म करवाने में फ़ौज के किरदार से, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल एहसान उलग साहब मौजूद हैं। उनसे आज हमारी एक मुख्तसरन बात हुई, उनसे हमने यही सवाल पूछा कि पाकिस्तान में ये खासा तासुर पाया जाता है कि फ़ौज का तमाम सियासी मामलात में एक किरदार होता है और उसी के कहने पे चीज़ें होती हैं और कहने पे ख़त्म हो जाती हैं, तो यही सवाल हमने पूछा। तो चलें सुनिए कि जनरल साहब क्या कहते हैं इस बारे में। आम पाकिस्तानी के नुक्ते निगाह से अगर हम देखें तो हम हमेशा अखबारों में ये सुनते आते हैं सियासत के हवाले से कि बहुत सारे मामलात में फ़ौज या एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अभी इस्लामाबाद में धरने का सिलसिला हुआ। एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, तो सवाल ये कि अक्सर ये समझा जाता है हमारे मीडिया में और हर जगह पाकिस्तान में एक आम आदमी का परसेप्शन ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों में कि हर मामले में पाकिस्तान के सियासी मामलात में एजेंसी इन्वॉल्वमेंट, तो ये जो परसेप्शन है, ये जो तासुर पाया जाता है, क्या ये हकीकत है या फसाना है, और अगर हकीकत है तो इसका क्या ताल्लुक होना चाहिए, किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए कि लोगों के जहन में जो इबहाम और वसवसे और शुबहात रहते हैं।
मैं इसका जवाब दो नुकात में इसमें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत एग्जेजरेटेड परसेप्शन है, ये सोच बहुत ही एग्जेजरेट की गई है, क्योंकि इसमें एक नैरेटिव, एक बयानिया चल रहा है और बयानिया ये है कि पाकिस्तान और इसके इदारों को बदनाम किया जाए। तो एक तो इसका ये एस्पेक्ट है जिसकी वजह से अगर कोई छोटी सी बात भी होती है तो उसको बढ़ा चढ़ा के हमारे इदारों की बदनामी का एक बायस बनाया जाता है, एक ये एस्पेक्ट देखनी चाहिए। दूसरा इसमें एस्पेक्ट ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो हमारा निज़ाम है, चाहे हमारे जमहूरी निज़ाम है, चाहे हमारे इदारे हैं, वो एक डेवलपमेंट स्टेज में हैं और उस डेवलपमेंट स्टेज में उसमें बहुत सारे आपको कमज़ोरियाँ मिलेंगी और वो अपने जो मामलात हैं उसको सही समझने में भी और संभालने में भी उनको दिक्कतें पेश आती होती हैं, जो कि ठीक है, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है अगर उनको दिक्कतें हैं और मुश्किलात हैं। वक्त के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि उसमें बेहतरी आती जाएगी, लेकिन उसमें कोशिश ये होती है कि उसमें बहुत सारे इदारे मिल के उन मामलात को हल करने की कोशिश करें। अब उसको बाज़ दफ़ा गलत तासुर दिया जाता है और उससे गलत मतलब निकाला जाता है, जो कि मेरे ख्याल में सही नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, या उसको हम कोई डीप स्टेट कहता है, कोई उसको हमार एजेंसियां, पाकिस्तान में एक रिवाज का सिलसिला चल पड़ा है उसको एजेंसियां कहना, उसके इन मामलात में ज़रूर अमल दखल रहता है, क्योंकि अक्सर ये मामलात ऐसे होते हैं जिनका इनके कौमी सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक़ रहता है और उसका उसमें शामिल होना ज़रूरी होता है। मसलन अभी जो इस्लामाबाद में धरने का मामला था, इसको मैं सियासत में इंटरफेरेंस नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ वहाँ एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला खड़ा हुआ था और उसके लिए एक सही फैसले के तौर पे वज़ीर आज़म ने और हुकूमत ने यह फैसला किया कि उसमें अफवाज पाकिस्तान की भी और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की भी मदद ली जाए, जो कि ली जानी चाहिए और किसी भी मुल्क में अगर ये होगा तो वहाँ ली जाएगी। अनफॉर्चुनेटली उसको फिर हम बदगुमानी के बायस बनता है और बनाते हैं और उसको, जैसे मैंने कहा, उसको एग्जेजरेट करके उसको हम اداروں کی بدنامی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو کہ ایک منفی عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔